जिन लोगों का सरनेम शेख होता है ना खुश हो जाती है, अब्दुल कादिर तो हमारा पड़ा, हमारा खानदान, हमारे फैमिली मेंबर था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, शेख के माने अरबी में आते बुजुर्ग आदमी, इसका ये मतलब नहीं कि तेरे खानदान का था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का खानदान अगर खोले ना तो लिखा है कि उनके बाप का रिश्ता पहुंचता है हजरत हसन की तरफ और माँ का रिश्ता पहुंचता है हजरत हुसैन की तरफ। मेरे दोस्तों, नबी के दो नवासों के दरमियान में अब्दुल कादिर पैदा हुए थे। मेरे दोस्तों, ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, उनके बड़े बेटे का नाम क्या बताया मैंने, शेख अब्दुल। मुझे सिर्फ एक बात बतानी, जब उनका आखिरी वक्त आया, अल्लाह अकबर, मेरे दोस्तों, अल्लाह वाला जाता है तो बड़ी शान से जाता है। अरे जाता है ना बड़ी शान से, अल्लाह ताला हमको भी प्यार मोहब्बत से ले जाए। भाई मरना तो है ना, अल्लाह भाई दुआ करो अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त, आखिरी घड़ी, 91 इयर्स की उम्र हो चुकी थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, आखिरी घड़ी, तीनों जीरो बेटे, और तीनों बेटे भी माशाल्लाह, भाई वली का बेटा वली, बड़े बेटे कौन, शेख अब्दुल वहाब। उन्होंने पूछा, अब्बा जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? देखो बेटे ने भी कैसा सवाल पूछा, अब्बा ए पीराने पीर, अब्बा क्या लेके जा रहे हो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, बड़े बेटे से कहा, अब्दुल वहाब फिकर मत कर, तेरा बाप तौहीद लेके जा रहा है, तेरा बाप तौहीद लेके जा रहा है। इस दिल में एक ही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस दिल में वही बात है। तो दूसरे बेटे शेख अब्दुल अजीज ने जब सुना कि अब्बा तौहीद लेकर जा रहे, दूसरे बेटे का नाम क्या, शेख अब्दुल अजीज, उन्होंने जब सुना तो कहा, अब्बा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। भाई बेटे ने कहा, आपके दिल में जब तौहीद है, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 91 इयर्स हंस पड़े, हंसते हंसते कहा कि बेटा अब्दुल अजीज कैसी दुआ देता, जन्नत की दुआ देता, अरे 30 साल हो गए रोजाना खुदा तेरे बाप को जन्नत बता रहा है, 30 साल से रोजाना खुदा तेरे बाप को जन्नत बता रहा, अरे जन्नत छोड़, ये दुआ मांग, अल्लाह अपना दीदार मुझे नसीब कर दे वे। तो तीसरे बेटे थे शेख अब्दुल जब्बार, तीसरे बेटे का नाम क्या, शेख अब्दुल जब्बार। उन्होंने कहा, अब्बा इसलिए कि जब आखिरी घड़ी आई, अब्बा की आंखों में आंसू आ गए, तो पूछा कि अब्बा बदन में दर्द होता है भाई, कहीं बदन में दर्द होता है? मेरे दोस्तों, ये जवाब अल्लाह का वली दे सकता। जब तीसरे बेटे शेख अब्दुल जब्बार ने पूछा कि अब्बा कहीं बॉडी में आपको दर्द होता है, तो क्या कह रहे, बेटा 91 साल का तेरा बूढ़ा बाप, भाई तेरी बूढ़ी सवारी, ये सर के बाल से लेकर पाँव का नाखून, मेरा पूरा बदन दर्द करता है, लेकिन बेटा अल्लाह की कसम मेरे दिल में बिल्कुल दर्द नहीं, इसलिए कि दिल में मैंने सिर्फ खुदा को बिठाया था, मेरे दिल पर कोई असर नहीं, इसलिए कि दिल में मैंने किसको बिठाया था, अल्लाह को बिठाया। फिर मेरे दोस्तों क्या हुआ, तीनों बेटे अभी बाप को देख रहे, बाप को देख रहे, और लिखा है किताबों में बाप ने 3 मर्तबा कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और 4th मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और कहा कि मेरे बेटे अब थोड़ा हट जाओ, फरिश्ते मेरी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। और मेरे दोस्तों आंखें बंद हो गई, ऐसे प्यारे अल्लाह के वली। लेकिन आज इनके हालात हमको मालूम, भाई इनके हालात हमको मालूम, अगर आप कहो तो मैं एक दो इनकी और बातें बताऊं, बताऊं वक्त तो नहीं होता आपका, अब आपको देखकर मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई माशाल्लाह। भाई बताओ एक बात बताओ, यानी कितने जबरदस्त लिखा है कि ये 4.5 साल की उम्र में कुरान के हाफिज हो गए थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 4.5 साल की उम्र में कुरान के। और ये भी किताब में लिखा कि जब अपनी उम्र के 13 साल को पहुंचे, 13 साल का तो बच्चा ही होता, बालिग नहीं होता, लेकिन 13 साल की उम्र को पहुंचे तो बगदाद में हदीस का सबक पढ़ाते थे, जहां तक आंखें जाती थी वहां तक इनके तलबा बैठे हुए होते थे, और बड़े बूढ़े कोई 80 साल का कोई 90 बूढ़े भी बैठते थे, एक छोटा सा तख्त था, ये 13 साल का बच्चा बैठ जाता था और ऐसे हदीस पढ़ाता था कि फरमाते 13 साल की उम्र में 2000 हदीसों का मैं हाफिज हो चुका था, 2000 हदीसों के हाफिज हो गए थे। और एक मरतबा क्या हुआ, किताबों में लिखा, एक मरतबा क्या हुआ, सबक पढ़ा रहे थे, ओ बड़ा मजमा, उसमें कोई 70 साल का, कोई 65, कोई 70, सब बैठे ये सबक पढ़ा रहे थे, और एक चिड़िया आ गई, क्या आ गई, एक छोटी सी चिड़िया सबक में आ गई, तो इन्होंने देखा वो खूबसूरत चिड़िया, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते उछल पड़े, और कभी चिड़िया को पकड़ने इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर भागे, भाई छोटा बच्चा होता कभी इधर, तो सारे बड़े बड़े लोग कहने लगे, ओ हमारे मौलाना को क्या हो गया, तो इन्होंने भी देखा, ओ सब लोग मुझे तो बहुत अजीब अजीब है ना, इसलिए कि भाई कोई मौलाना हंस भी पड़े तो गुनाह हो जाता है, भाई मौलाना हंस भी पड़े तो, कोई मौलाना अच्छी गाड़ी में बैठे तो, ओ ये कैसे अच्छी गाड़ी में बैठ गया, तो क्या अच्छी गाड़ी तेरे लिए जन्नत से उतरी थी, तू बैठे तो कुछ नहीं, मौलाना बैठे तो, मौलाना अगर रास्ते में खड़े होकर हंस पड़े, एक जो मौली सामने रास्ता में उभारे ने हंस तो थे, भाई ये अजीबोगरीब बात है, अरे ऐसा होता क्या नहीं होता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे मेरे दोस्तों बल्कि सोच, वो रास्ते में हंसता है वो तो जन्नत में भी हंसने वाला है, अरे वो तो अल्लाह ने उसके दिल में कुरान का नूर उतार दिया है, वो तो जन्नत में भी हंसने वाला, लेकिन तू यहां भी नहीं हंसा वहां भी नहीं हंसेगा, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो वो पीराने पीर कितनी उम्र थी भाई, कितनी उम्र थी तेरा, ओ चिड़िया को पकड़ने इधर उधर। तो जब उन्होंने देखा कि सारे लोग देख रहे हैं कि ये शेखुल हदीस को क्या हो गया भाई, ये तो शेखुल हदीस थे। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ लोग तो चुपचाप आकर बैठ गए, गर्दन झुका दी, और कितना अच्छा जुमला कहा, कहा कि भाई मुझे माफ करना, इल्म के एतबार से बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन उम्र के एतबार से तो अभी बचपना ही है। कितने अच्छे अंदाज में फरमाया, इल्म के एतबार से बूढ़ा हो गया लेकिन उम्र के एतबार से तो मैं बचपना ही है, इसलिए मेरे बचपन की इस चीज को तुम लोग माफ कर देना मेरे दोस्तों। और इल्म भी कैसा था उनका, इल्म की एक झलक बता दूं मैं आप लोगों को, देर तो नहीं हो रही भाई, मैं भाई से इजाजत ले लो भाई, कोई देर तो नहीं। एक बात बता दूं मैं, इल्म की बात, इतनी प्यारी इल्म की बात उनकी, लिखा है कि 13 साल की उम्र थी, कितनी उनको खबर मिली कि उनके ये बगदाद में या इराक में कोई शहजादा था, उसने एक कसम खा ली। भाई वो शहजादे को भी हरी हरी सूझती, हम लोगों को भी कभी कभी पैसा बहुत होता है ना तो बहुत हरी हरी सूझती है, पैसा ज्यादा होगा ना तो बहुत उछलेगा, ये शादी का मामला आया तो 2-4 लाख पाउंड खर्च हो जाते कि नहीं हो जाते, अरे हो जाते कि नहीं हो। और क्या समझता कि सारे लोग मेरी तारीफ करते होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों कोई तारीफ नहीं करता, क्यों नहीं करता, जब ऊपर वाला नहीं करता तो नीचे वाला कहां से तारीफ करेगा, भाई कोई तारीफ करेगा। अब वो जो उस जमाने का शहजादा हुआ, उसने एक अजीब तरह की कसम खाई, क्या कसम खाई, कसम खाई कि मैं एक इबादत करूंगा और वो इबादत दुनिया में कोई भी नहीं करता होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इबादत करूं और दुनिया के कोने में कोई वही इबादत करता होगा तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब बताओ कैसी कसम, ये तलाक तो बड़ी अजीब बात है। यहां भी मैं अपने जवानों को देखता हूं, ऐसा लगता है कि वो बंदूक में 3 गोली खुदा ने दी, जब चाहे उसको उड़ा दे, है ना। और हमारे भाई भाई लोग माफ करना, हम लोग बीवी को बहुत धमकी देते, देते कि नहीं देते, कहते जरा कुछ बोली तो तलाक दे दूंगा, जहां कुछ होगा तुझे तलाक दे दूंगा। और कभी कभी तो गुस्से में आता तो कहता कि तू भी खराब, तेरी माँ और तेरा बाप भी खराब। अरे उसकी माँ और बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं कुछ बिगाड़ा था? तो वो बगदाद में इराक में किसी शहजादे ने कसम खा ली, भाई किसी शहजादे ने कसम खा ली, क्या कसम खा ली कि मैं इबादत करूंगा और पूरी दुनिया में अकेला मैं ही वो इबादत करूंगा, मेरे साथ कोई भी वो इबादत नहीं करेगा और अगर कोई करेगा तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब पूरे बगदाद के उलमा जमा हो गए कि भाई ऐसा कैसे, इसलिए कि ये नमाज पढ़ेगा तो दुनिया में कोई ना कोई तो नमाज पढ़ता होगा, अरे पढ़ता होगा ना तो बीवी को 3 तलाक हो जाएगी, अरे ये कुरान पढ़ेगा तो दुनिया के कोने में कोई ना कोई तो कुरान पढ़ता होगा तो तलाक। सारे उलमा ने कहा कि भाई ये तो बीवी को 3 तलाक होना ही होना, इसलिए कि जब ये इबादत करेगा दुनिया के कोने में कोई ना कोई इबादत करेगा तो तलाक हो जाएगी। ये 13 साल के पीराने पीर वहां पहुंच गए, कहा इस मसले को मैं हल करता हूं, कहा इस मसले को मैं हल करता हूं, कहो सुभान अल्लाह। तो सारे उलमा ने कहा भाई ये 13 ईयर्स का ये छोटा सा बच्चा, ये क्या मसले को हल करेगा, कहा कि हाँ मैं हल करूंगा लेकिन ये शहजादा है, इसको कहो मेरे साथ मक्का चले, इसको कहो मेरे साथ मक्का। भाई शहजादे थे, फौरन सवारी का इंतजाम हो गया, ये 13 साल के बेटे और शहजादा दोनों बैठ गए, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, काबे के करीब गए। जब काबे के करीब गए तो कहा तू शहजादा है, यहां के अमीर को कह दे थोड़ी देर के लिए काबा खाली कर दो, थोड़ी देर के लिए काबा खाली कर दो। चुनांचे शहजादे ने कहा, काबा खाली किया गया। अब ये 13 साल के पीराने पीर ने कहा जा उठ तवाफ कर, इस वक्त दुनिया में तेरे सिवा ये इबादत कोई भी नहीं करता होगा, तवाफ कर ले, इस वक्त काबे पर तू जो तवाफ करता है कोई भी दुनिया में तवाफ, इंग्लैंड में तवाफ होता नहीं होता, फिर भी कुछ लोग करते करते कि नहीं करते, आंखों का गलत इस्तेमाल जब होता है ना तो अलग अलग घरों का तवाफ करता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पीराने पीर ने फरमाया, पीराने पीर ने फरमाया, और 13 साल के बच्चे ने फरमाया कि जा शहजादा काबे का तवाफ कर, कसम अल्लाह की तू वो इबादत करता है कि आज पूरी दुनिया में कोई इबादत नहीं करता, जब तवाफ कर लिया कहा जा अब तेरी बीवी को 3 तलाक होने वाली नहीं है, शर्त पूरी हो गई। मेरे दोस्तों बताओ अल्लाह ने कैसा इल्म दिया था पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, अल्लाह ताला मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह अपने वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए। खैर मेरे दोस्तों मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा भाई, फिर एक मरतबा कह दो जम के ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर। मेरे दोस्तों हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम नहीं, हमारे नबी ने जो कानून बताया मेरे दोस्तों उसका इनकार मत करना। मेरे दोस्तों मेरी माँ बहनों को कहूंगा अल्लाह के रसूल ने जो पर्दे का कानून बताया इनकार मत करना। अरे कहा कि नहीं कहा, हमारे नबी ने पर्दे का कैसा हुक्म दिया, कैसा हुक्म दिया कि एक नाबीना आदमी घर में आ गए, कौन नाबीना साहबी, वो साहबी को नजर नहीं आता था, हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम पूरा नाम है लेकिन मैं इतना बताऊं, हजरत अब्दुल्ला नजर नहीं आता था, नजर घर में आ गए, अल्लाह के रसूल बैठे उनको नहीं मालूम, वो आ गए अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल के पास एक तरफ उम्मे सलमा एक तरफ मैमूना, अल्लाह के रसूल की 2 बीवियां बैठी, कौन उम्मे सलमा और हमारे नबी ने क्या फरमाया, ए उम्मे सलमा मैमूना पर्दा करो, इहतजीबा मिन्हु पर्दा करो, पर्दा करो, वो अब्दुल्ला है पर्दा करो। हमारे नबी ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि पर्दा करो, तो दोनों बीवियों ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल क्यों पर्दा करें, उनको तो नजर भी नहीं आता, میں ان کو کہا وہ تو ان کو تو نظر نہیں آتا, وہ تو ہم کو دیکھتے بھی نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, افا امیاوانے انتما, ارے ان کو نظر نہیں آتا, کیا تم دونوں اندھی ہو چکی ہو, تم دونوں اندھی ہو چکی ہو, بھائی ان کو نظر نہیں آتا لیکن تم تو اس کو دیکھ رہی ہو. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگی. ارے ہوگی کوئی, کہہ دو قسم اللہ کی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پاک, ہمارے نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن عورت پیدا ہوئی نہیں اور پیدا ہوگی نہیں. ہمارے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب کی سب پاک دامن ہے. میرے دوستو اتنی پاک دامن ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کو جب بیوی دینی تھی تو اللہ نے وہی دی ہوگی جس کی پاک دامنی کی قسم اللہ نے آسمانوں پر کھائی ہوگی. میرے دوستو ہمارے نبی کی ہر بیوی پاک دامن, اسی لیے عائشہ پر زینا کی تہمت لگی تھی نا عائشہ پر زینا کی تہمت لگی, اور جب ہمارے نبی کو تھوڑا سا شک ہو گیا, بھائی ہمارے نبی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے فرمایا میرے نبی تو پاک ہے, تجھے وہی بیوی دوں گا جس کی پاکی کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے نا. اس لیے کہ ناپاک کے ساتھ ناپاک, پاک کے ساتھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خیر میرے دوستو میں پھر اپنی ماں بہنوں کو ایک بات کہوں گا کہ دیکھو اللہ کرے یہ جو آفت اٹھی ہے اللہ ہم کو اس کے دبانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کس طرح دبائیں گے بھائی, اس طرح دبائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ اب غیروں نے بھی جب اس پر مذاق اڑانا شروع کیا اب میں نبی کے دامن کو پکڑنے والی بن جاؤں گی. میری ماں بہنیں قسم اللہ کی اگر ان حالات میں اگر کوئی ماں بہن پردہ نہیں کرتی تھی لیکن ان حالات میں اگر وہ پردہ کر لے تو اللہ آسمان پر اتنا خوش ہوگا کہ کوئی میرے نبی کے طریقے کو دفن کرنا چاہتا تھا تو نے اس کو زندہ کر دیا, جہاں میں نے بھی تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا. بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں ماں بہنوں کے لیے گولڈن چانس, بہت قیمتی موقع ملا, اگر یہ چلا جائے گا میرے دوستو میں تو کہتا ہوں کہ جب توا گرم روٹی پکا لو. ابھی توا گرم ہے, لوگ پردے کا انکار کر رہے ہیں, لوگ پردے کو پھینک رہے ہیں, اس وقت کوئی اللہ کی بندی کھڑی ہو جائے کہ میرے نبی کی چادر کو کوئی اتار رہا, کوئی فاطمہ کی چادر کو پھینک رہا, کوئی عائشہ کی چادر کا جنازہ اٹھا رہا, آج اسی چادر کو میں سینے سے لگاؤں گی, اللہ بھی کہے گا جس جنت میں فاطمہ اسی جنت میں میں تجھے پہنچا دوں گا, اسی جنت میں میں تجھے پہنچا دوں گا جس جنت میں میں نے عائشہ کو رکھا, جس جنت میں میں نے حفصہ کو رکھا. کوئی نبی کی بیویوں کی چادر اڑائے اور ہم چادر پہنا دے, اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میری ماں بہنیں پردہ کر لے تو بہت اچھا ہوگا, اور نہ کرے اللہ کے واسطے انکار نہ کرے ورنہ ایمان چلا جائے گا. جو کچھ تھوڑا بہت کیا ہے وہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. آخری بات میرے دوستو, دیکھو رمضان کی مبارک رات ہے, میں بھی بیمار تھکا ہوا, بھائی دعا کرو میرے لیے بھی, دعا کرو ہم سب کے لیے, اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت فرمائے. میرے دوستو ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا. میرے دوستو میں اکثر یہ بتاتا ہوں, اس لیے بتاتا ہوں اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا دل اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے. میرے دوستو دیکھو ہم کتنے بھی گندے, بھائی سوچو ہم کتنے بھی گندے, لیکن معاف کون کرے گا؟ ارے معاف کون کرے گا اللہ. میرے دوستو ہم کتنے بھی گندے اسی کے بندے ہیں, معاف وہی کرنے والا. اور میرے دوستو حیات الحیوان میں ایک عجیب واقعہ لکھا, اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. حیات الحیوان میں لکھا ایک شاعر تھا ابو نواس, کیا نام تھا؟ ہاں میرے دوستو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یاد کر لو اس بات کو, اتنی پکی بات ہے. علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان, انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو یاد ہو جاوے. کیا لکھا؟ ایک شاعر تھا, کیا نام تھا؟ ابو, بڑا شرابی کبابی جواری پاپی, بہت بہت ہی زیادہ گنہگار تھا. مر گیا تو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں بھی جانے کو تیار نہیں تھے. اسے سوچو کہ کتنا پاپی اور کتنا شرابی اور کبابی ہوگا. خیر مر گیا, جنازے کی نماز پڑھ لی گئی, کچھ لوگوں نے پڑھا نہیں, پڑھا دفن کر دیا. خیر دفن کر دیا, کچھ دن گزرے, اے ابو نواز تو جنت میں, تیرے بارے میں تو ابھی بھی سب لوگ تیرے شرابی کبابی جواری ہونے کی باتیں کر رہے, تو جنت میں گم رہا. تو ابو نواز نے کیا کہا کہ ہاں تھا تو میں شرابی کبابی جواری جہنمی تھا, لیکن مرنے سے پہلے میں شاعر تھا. کہتا ہے میں شاعر تھا,